सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धमनन्तमणिन्द्रिय मणुव मम पथसोखमणवज्रं केवलपहोहणिज्य दुन्नयतिमिरं जिनं नमः। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी थी, जिसके रचयिता है भूतबलि और पुष्पदंत आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार ये रचना की थी, जो उपदेश हमें भगवान महावीर द्वारा प्राप्त हुआ है। अब यहाँ हम पृष्ठ संख्या 526 पर आए हैं। हाँ, ये अपना विषय कौन सा चल रहा है? ये मार्गणा हम देख रहे हैं। मार्गणाओं में हमने गति मार्गणा शुरू की थी, उसमें नरक गति की बात हुई, तिर्यंच गति की बात हुई, अब मनुष्यों की बात चल रही है। मनुष्य गति में मनुष्यों के उन्होंने भेद चार प्रकार से बताए हैं। एक तो सामान्य मनुष्य, फिर पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी और अपर्याप्त मनुष्य। उसमें से हमने पर्याप्त मनुष्यों की बात देखी थी, मनुष्यनी की बात अभी, यानी सामान्य की और पर्याप्त की देखी, अब मनुष्यनी की बात हो रही है। उसमें हमने मनुष्यनियों में भी पर्याप्त अपर्याप्त भी सारे भेद देखे थे, कौन कौन से गुणस्थान होते उसकी भी चर्चा की थी। अब जो पर्याप्त मनुष्यनियों में तो 14 ही गुणस्थान होते हैं, तो उसकी अब यहाँ चर्चा चल रही थी, और 8वें गुणस्थान तक की हमने बात देखी थी। अब 9वें गुणस्थान पर लगाएंगे, मनुष्यनी और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के हम 5 भेद करते हैं। 5 भेद जो है उसमें पहले भाग में दूसरे 5 भेद है, पहले में वेद भी है और कषाय भी है, दूसरे में वेद नहीं है कषाय है, अब क्रम से एक एक कषाय चला जाता है, इस तरह से उसके 5 भाग हुए हैं, वो हमें याद रखना है। अब यह हम अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के प्रथम भाग वर्तिनी मनुष्यनियों के आलाप देखेंगे। प्रेरणा बेन आप कहेगी, किसको कहना है? हाँ, आप कहना। हाँ, 9वां गुणस्थान, संगी पर्याप्त, हाँ 6 पर्याप्ती है, 10 प्राण, संज्ञा, हाँ कौन कौन से 2? हाँ? आहार और भय गए, हाँ मैथुन और परिग्रह है, ये 2 संज्ञा है, हाँ? पहला भाग है, 2 संज्ञा है, गति इंद्रिय, 1 पंचेंद्रिय, काय त्रस काय, 9 योग, 1 स्त्री वेद, क्योंकि हम मनुष्यनी का ही देख रहे हैं, कषाय 4, ज्ञान, हाँ मनपरे को छोड़ना है, स्त्री वेद है ना, इसलिए देखिए, स्त्री वेद हो या नपुसक वेद हो उसको मनपरे ज्ञान नहीं होगा, ये ख्याल में रखना। संयम में सामायिक और छेदोपस्थापना, हाँ दर्शन 3 दर्शन, लेशा द्रव्य की 3, द्रव्य की 6, हाँ 1 शुक्ल लेशा, क्योंकि अभी ये श्रेणी वाला जी 9वें गुणस्थान वाला, भव्य है, सम्यक तो कौन कौन से हो गए, हाँ 9वां गुणस्थान है तो औपशमी किया शायिक, बराबर है, संगी आहार, हाँ और उपयोग 2, बराबर है, बहुत अच्छा। कौन से मनुष्यनी भाव, स्त्री वेद, द्रव्य से पुरुष वेद, ये बात देखो ये स्त्री वेद की बात चल रही है, यहाँ जो वेद वाला मार्गणा है उसमें भाव की ही बात चल रही है, द्रव्य की बात हमने अभी तक लिखी ही नहीं कभी।
देखो यहाँ पर आठवां गुणस्थान है वो पुरुष को होगा क्या स्त्री को होगा, आठवां गुणस्थान चल रहा है ना अपना, तो पुरुष से अपने द्रव्य से पुरुष होगा क्या स्त्री होगी, हाँ तो पुरुष होगा उसको स्त्री वेद है, वो भाव वेद की बात चल रही है।
देखो यहाँ आप पेज नंबर 515 निकालना, नीचे से तीसरी लाइन अंत में 515, हाँ यहाँ भाव वेद से प्रयोजन है द्रव्य वेद से नहीं, बराबर। इसका कारण यह है कि यदि यहाँ द्रव्य वेद से प्रयोजन होता तो अपगत वेद रूप स्थान नहीं बन सकता, द्रव्य वेद का अपगत वेद होगा नहीं, क्योंकि द्रव्य वेद तो 14वे तक चलता रहेगा। इसलिए यह जो वेद वाला जो कॉलम है वहाँ भाव वेद की ही अपेक्षा है और उसकी ही हम लिखते हैं, द्रव्य वेद की चर्चा नहीं, क्योंकि ये तो सामान्य सबको मालूम है, इसलिए यहाँ अलग से लिखने की जरूरत नहीं कि द्रव्य से जो स्त्री है वो पांचवें गुणस्थान तक ही होती है। यहाँ जो वेद मार्गणा में जो कथन है वो तो भाव की अपेक्षा ही है। चले अब इसी मनुष्यनी पर अब जो दूसरा भाग है ना, द्वितीय भाग, उस पर लगाना है। कौन लगाना चाहते? हाँ मयंक भाई आप बताना, गुणस्थान, नौवा गुणस्थान, जीव समास, संगी पर्याप्त, हाँ पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा, हाँ कौन सी एक, हाँ परिग्रह, परिग्रह एक संज्ञा रह जाएगी, पहले भाग में है अब नहीं है, वो एक परिग्रह संज्ञा रहेगी, बराबर है। गति मनुष्य गति, इंद्रिय एक पंचेंद्रिय काय त्रस का, योग में 9 योग, बराबर है। वेद में हाँ अपगत वेद, अभी ख्याल है ना, ये ख्याल में रखना। अभी तो हम स्त्रीवेद कहते आए तो हम तो स्त्रीवेद कह देते, परंतु अभी यहाँ ध्यान रखना है, मैथुन परिग्रह भी चला, मैथुन संज्ञा भी चली गई और वेद भी चला गया, अभी अब अपगत वेद लिखेंगे। कषाय ज्ञान कौन से 4, मनोपर्य नहीं होगा पहले ना, मति श्रुता उदी, हाँ संयम 2 ही है, सामायिक और छेदोपस्थापना, बराबर है। दर्शन 3, लेशा द्रव्य की 6 और भाव की 1, भव्य के अभव्य, भव्य सम्यक तो कौन कौन 2 ही हो गए, औपशमिक और क्षायिक, हाँ संगी है, आहारक है और उपयोग दोनों है, बहुत अच्छा। तेजो भाई अभी तीसरा भाग लगाना, गुणस्थान हाँ अनिवृत्तिकरण, तृतीय भाग अभी, जीव समास, संगी पर्याप्त, पंचेंद्रिय तो है परंतु पर्याप्त कहना, हाँ पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 1, परिग्रह बहुत अच्छा, गति मनुष्य गति, इंद्रिय 1 पंचेंद्रिय काय त्रस का, योग 9 योग है, वेद 0, हाँ कषाय अभी 3 हो जाएंगे। दूसरे भाग में वेद चला गया था, अब क्रोध चला गया, यानी क्रोध के बिना अभी 3, हाँ ज्ञान 3, हाँ संयम कौन सा संयम होगा, नौवा गुणस्थान चल रहा है ना, हाँ सामायिक और छेदोपस्थापना, हाँ दर्शन 3, हाँ बराबर, लेशा द्रव्य से और भाव से 1, भव्य हाँ सम्यक तो कौन कौन से, औपशमिक शायिक दोनों, संगी है, आहारक है और उपयोग दोनों, अब चौथे भाग की बात है, प्रेरणा बिना आप लगाना। हाँ डॉक्टर को बताइए, हाँ अगला वाला बताएंगे। अच्छा डॉक्टर बता दो, चतुर्थ भाग, हाँ गुणस्थान नौवा, जीव समास संगी पर्याप्त बराबर है, पर्याप्ति छः, प्राण हाँ संज्ञा एक, गति मनुष्य गति, इंद्रिया एक पंचेंद्रिय काय त्रस काय, योग नौ, वेद अभी अपगत वेद, हाँ हाँ कषाय कषाय, हाँ अभी दो है, चौथे भाग में दो, तीसरे भाग में तीन थे, अभी दो है, ज्ञान तीन, संयम हाँ सामय छे दो बस ना बराबर है, हाँ दर्शन तीन, लेशा हाँ द्रव्य से छे भाव से एक, भव्य सम्यक्त्व कौन से हो गए, क्षयोपशमिक क्षायिक औपशमिक, हाँ क्षायिक और औपशमिक बराबर है, संगी आहारक हाँ और उपयोग दोनों, बहुत अच्छा, ये चौथा भाग हुआ। अब आप पांचवा भाग बताना, प्रेरणा बिन गुणस्थान नौवा संगी पर्याप्त छः दस संज्ञा एक बराबर, मनुष्य गति पंचेंद्रिय त्रस्काय नव योग, हाँ वेद झुरो अभी ये ख्याल में रखना, वेद झुरो है हाँ, अभी कषाय एक, हाँ एक अकेला लोभ रहेगा, पांचवा भाग है ना अंतिम भाग, ज्ञान तीन सुज्ञान, संयम सामायिक छेदोपस्थापना, दर्शन तीन, लेशा हाँ द्रव्य की छह भाव की एक, शुक्ल भव्य सम्यक्त्व हाँ बहुत अच्छा, संगी आहारक उपयोग दो, बहुत अच्छा, हाँ आपने लगाया ना। आप दसवा गुणस्थान बताना देवेंद्र भाई, हाँ आपका हुआ कि नहीं, आज हुआ ही नहीं है, अच्छा जरा इनको ट्राई करने दो, हाँ हाँ गुणस्थान, मुझे लगा पहले आप आलाप आपने बताया था, दसवा सूक्ष्म सांप्राय जीव समास संगी पर्याप्त अच्छा छः पर्याप्ति दस प्राण संज्ञा कितनी, हाँ तो अभी एक एक है, एक परिग्रह है सूक्ष्म लोभ बताया उन्होंने, संज्ञा में एक सूक्ष्म लोभ में परिग्रह कौन सा है वो मैंने बताया, सूक्ष्म एक परिग्रह, गति मनुष्य इंद्रिया पंचेंद्रिय काय द्रस काय नव योग अपगत वेद कषाय, अभी दसवा गुणस्थान है सूक्ष्म लोभ है ना, उपशांत कषाय ग्यारहवे में कहेंगे, अब यहाँ दसवा गुणस्थान चल रहा है, सूक्ष्म सांप्राय नाम है ना तो सूक्ष्म लोभ है, हाँ एक सूक्ष्म लोभ, ज्ञान तीन, संयम कौन से संयम है, अभी सूक्ष्म सांप्राय संयम है, अभी दसवा गुणस्थान है तो नौवे तक सामयिक छेदोपस्थापना है और दसवें में सूक्ष्म सांप्राय, बहुत अच्छा, दर्शन तीन, लेशा हाँ द्रव्य की छः और एक भाव की शुक्ल, भव्य हाँ सम्यक्त्व दोनों, हाँ हाँ संगी आहारक उपयोग दोनों, बहुत अच्छा, एकदम पढ़ना है बाद में, अच्छा चलो हाँ उपशांत कषाय की बात करना भाई, आप देवेंद्र भाई गुणस्थान ग्यारहवा जीव समास पर्याप्त पर्याप्ति छः दस प्राण संज्ञा जीरो हो जाएगी, अभी मनुष्य गति पंचेंद्रिय त्रस काय नव योग वेद जीरो कषाय अभी जीरो करना, उपशांत कषाय ना अभी, हाँ ज्ञान तीन है, संयम अब यथाख्यात संयम होगा, सूक्ष्म सांप्राय में सूक्ष्म सांप्राय था अब यथाख्यात, हाँ तीन दर्शन हाँ छः और एक भव्य सम्यक तो दोनों है, औपशमिक तो शायिक हुआ, ये चारित्र हुआ है ना। सम्यक तो वही बना रहेगा जो द्वितीय उपशम के साथ जाएगा या शायिक के साथ जाएगा, तो उसका सम्यक तो वही रहेगा। हाँ, संगी हाँ दो उपयोग।
देखो यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि उपशम श्रेणी दो प्रकार के जीव जा सकते हैं, एक द्वितीय उपशम सम्यक तो यानी औपशमिक सम्यक तो वाला और एक शायिक सम्यक तो वाला, इसलिए यहाँ सम्यकों में दोनों लगाना है अपने को। पती क्या बारवा आप लगाना,
अविक्षीण कषाय वाला लगाना। हाँ, बारवा गुणस्थान, संगी पर्याप्त, छह पर्याप्ति, दस प्राण, जीरो संज्ञा, हाँ, मनुष्य गति, एक पंचेंद्रिय, त्रस काय, हाँ, योग नौ, वेद जीरो, कषाय भी जीरो, ज्ञान ज्ञान कितने, तीन है ना, क्योंकि अपगत है वेद, फिर भी वो पहले स्त्रीवेद वाला था, तो तीन ही ज्ञान, संयम, हाँ, दर्शन तीन, हाँ, छह और एक लेश, भव्य अकेला क्षाई, शपक श्रेणी है और अभी अरिहंत बनने जा रहे हैं, है ना, बारवा गुणस्थान है, ग्यारहवें तक तो दोनों ऑप्शन थे, अभी क्षाईक सम्यक्त्व, संगी, आहारक दो, मयंग भाई आप तेरवा गुणस्थान, संयोग केवली गुणस्थान वर्तिनी मनुष्यनिया, हाँ, गुणस्थान तेरवा, जीव समास अपर्याप्त होगा कि नहीं होगा, दोनों हो गए, ये मनुष्यनी है उसमें समुद्गत है, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों, पर्याप्ति छे, हाँ, प्राण अभी प्राण कितने होंगे, हाँ, चार, समुद्घात में दो होते हैं, वचन बल भी नहीं होता है और श्वासोश्वास भी नहीं होता, और पर्याप्त उनको चार प्राण कौन कौन से है, नहीं नहीं योग नहीं पूछे मैंने, प्राण चार प्राण, हाँ आप कहे ना मंदा बेन, केवली के चार प्राण, हाँ श्वासोश्वास है, आयु है, काय बल, वचन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास और आयु, जब समुद्धात होता है तब वचन बल ही नहीं है और श्वासोश्वास नहीं है, तो रिमेनिंग दो, तो प्राण में चार और दो, गति, हाँ, इंद्रिय, हाँ, काय, हाँ, योग बताना भी, कितने हो गए, हाँ आप बताना, हाँ हाँ, अब कौन है मन्ना बेन आप बताना, हाँ वचन बल नहीं, वचन योग, दो वचन योग है, हाँ हाँ आप बताना, मैं नहीं कहूँगी, हाँ तेजू बेन बताना, मनोयोग चार, रुकना जरा नए लोगों को ट्राई करने दो, हाँ मनोयोग, हाँ वचन योग, कितने कितने, हाँ मनो के दो, वचन के दो, औदारिक, औदारिक के दो, एक कारमण, कितने हुए टोटल, सात हुए, आप क्या कहते मंदा बेन, हाँ आपका अभी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, प्रेरणा बिना आप कहो, देखो देखो वचन के दो होते हैं, सत्य और अनुभव। मनोयोग भी है वहाँ, उपचार से हम कहते हैं ना, मनोयोग के भी दो, सत्य और अनुभव, औदारिक, औदारिक मिश्र और कारमाण, क्योंकि हमने समुद्रात को भी लिया है इसलिए, तो सात योग सात हो जाएगी। हाँ बराबर है ना। हाँ बोलो, वेद कषाय ज्ञान एक ही है अभी, हाँ केवल ज्ञान, संयम यथाख्यात संयम, दर्शन एक केवल दर्शन, लेशा द्रव्य की छह और भाव की एक, भव्य हाँ सम्यक्त्व शायिक सम्यक्त्व, संगी संगी अभी नहीं अनुभव कहना अभी, हाँ संगी असंगी से पार, हाँ आहारक है क्या दोनों है, हाँ और उपयोग दोनों, युगोपत अभी युगोपत कहना, हाँ बिल्कुल युगोपत है ना अभी, अभी युगोपत है तो सोचने का सवाल ही नहीं है कि होगा कि नहीं है आठ समय के लिए, हाँ आठ समय के लिए होगा कि नहीं, यानी ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग जो भी अल्टरनेट होता है, तो हो सकता है कि वह दर्शन उपयोग हो गया और अंतर्मूर्त तक ज्ञान चला, तो बीच में उसको रेस्ट था जरा उपयोग को। हाँ अब हाँ चौदवा आप लगाना, हाँ नहीं होने दो ना तो सब समझ जाएंगे ना, हमारा पक्का हो जाएगा, भले मिस्टेक हो तो अपना ज्यादा उसमें ख्याल रखता है। चौदवा गुणस्थान, हाँ संगी पर्याप्त, पर्याप्ति छे, प्राण कौन कौन सा होगा, प्राण चौदह, हाँ पांच कौन से है गिनाओ आप उनके पास बस देखना, हाँ आप जितने मिस्टेक भले हो जाए कोई बात नहीं, तो हमारे ख्याल में आ जाएगा ना, हमने हाँ सहयोगी में कितने देखे थे, चार देखे थे, हाँ और अभी उसमें से कौन कौन से चले जाएंगे, वचन होगा क्या योगी को, नहीं वचन बल नहीं है, काय बल भी होगा कि नहीं, वो भी नहीं, श्वासोश्वास वो भी नहीं, अभी एक आयु प्राण, हाँ एक आयु प्राण, संज्ञा जीरो, गति मनुष्य, इंद्रिय पंचेंद्रिय है, बोलना अभी तो बोलना, देखो इंद्रिय में तो बोलना, पंचेंद्रिय उनकी जाती है और पंचेंद्रिय नाम कर्म का उदय चौदहवें तक है, ख्याल है ना, तो वहां बोलना, काय में त्रस का योग कितने हो गए, मन के हो गए कि नहीं होंगे, नहीं हो गए, हाँ वचन के, हाँ काय के, काय बल नहीं है, योग होगा कि नहीं होगा, गुणस्थान का नाम क्या है अयोगी है, कोई बात नहीं दूसरे हमें मदद करेंगे इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए अपना कॉन्फिडेंस रखना, हाँ हाँ वेद जीरो, कषाय जीरो, केवल ज्ञान, यथा क्या संयम, केवल दर्शन, लेशा द्रव्य की कौन सी होगी, हाँ छह रहेगी, और भाव की देखो देखो भाव की लेशा कोई नहीं है, और द्रव्य की भले अभी काय है उनके, काय बल नहीं है, शरीर है कि नहीं है, शरीर है वहाँ तो शरीर का वर्ण भी रहेगा, शरीर चौदहवें के अंत तक है और उसके बाद वो परमाणु जीव निकल गया वहां से, ख्याल है ना, हाँ भाव की लेशा नहीं है, भव्य है, सम्यक्त्व शायिक संगी, हाँ और संगी नहीं नहीं संगी 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 असंगी से रहित अनुभय हम कहें। और आहारक है क्या? आ? योग नहीं है तो अनाहारक है। अनाहारक है ये अनाहारक, अनाहारक के बिना नहीं कहना। अभी योग नहीं है तो अनाहारक है, यानी पर्याप्त होते हुए भी अनाहारक वाला ये एक गुण स्थान है। हमने पहले देखा था ना, पर्याप्त अवस्था में भी आहारक और अनाहारक दोनों लिए, क्योंकि चौदहवें गुण स्थान में पर्याप्त होते हुए भी अनाहारक है। शरीर तो है वहां पर, शरीर के परमाणुओं का ग्रहण नहीं है, योग भी नहीं है। हाँ, दोनों युगपत। अभी युगपत, हाँ, तेरहवे और चौदहवे में युगपत कहना।
अभी एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, आपको ही पूछ रहा हूँ समझ लो, कि इसमें आपने बोला कि भाव योग कुछ नहीं होते हैं, तो उसका कारण क्या है?
भावलेश्य।
हाँ, तो योग नहीं तो क्या हो गया? कषाय और योग दोनों ही नहीं है, इसलिए वहाँ अभी लेशा नहीं, भाव लेशा नहीं। ये रीजनिंग हमारे ख्याल में आ गया ना, तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो बिल्कुल सहज है ख्याल में। तो अभी भाव से कुछ नहीं है और द्रव्य से क्षय होगी।
शरीर का जो वर्ण है वो तो कायम रहेगा, शरीर तो बना बनना वहाँ पड़ा है ना, काय का बल नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी वहाँ आत्म प्रदेशों, हाँ, कुछ उसका कार्य में नहीं, आत्म प्रदेशों का उसके साथ कुछ योग भी नहीं है और उसका बल भी नहीं है। अभी हम इसको सबसे क्रम से हम इसको पढ़ेंगे, बढ़ते समय भी आप कॉलम्स देखते जाना, या सब भी कॉलम देखे तो भी चलेगा, कैसे भी। हाँ हाँ, 526 अभी हम पढ़ेंगे। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के प्रथम भागवर्तिनी मनुष्यनियों के आलाप कहने पर, एक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तिया, दशो प्राण, आहार और भय संज्ञा के बिना शेष दो संज्ञाएं, क्योंकि आठवें गुणस्थान तक ही भय है, भय का उदय। अभी वो रुक जाता है आठवें में। देवेंद्र भाई और कौन कौन से रुक जाते हैं उदय की विच्छित्ति, आपको याद है? अश्विन भाई नहीं याद है? भय जुगुप्सा और रति रति, और जरा बढ़ाओ ना, हाथ से रति रति, शोक भय जुगुप्सा, ये छह नौकशाय आठवें की उदय की विच्छित्ति में हमने देखा था। हाँ क्या, हाँ मनोवे में कैसे होगा? हाँ आठवे में उसकी विच्छित्ति हुई, यानी नौवे में अभी भय संज्ञा नहीं लेना। हाँ, तो दो संज्ञाएं ली, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और औदारिक काय योग, ये नौ योग, स्त्री वेद, चारों कषाय आदि के तीन ज्ञान, सामायिक छेदोपस्थापना, ये दो संयम आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छो लेशा है, भाव से शुक्ल लेशा। लेशा में शुक्ल में एक, भाव एक लिखना, शुक्ल एक, भाव के आगे एक लिखना, भाव एक और नीचे शुक्ल तो लिखा ही है। भव्य सिद्धिक, औषमिक और क्षायिक, ये दो सम्यक्व, संगिनी, आहारिणी, साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। अब दूसरा भाग कहेंगे, देखेंगे हम। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के द्वितीय भागवर्तिनी मनुष्यनियों के आलाप कहने पर, एक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छो पर्याप्तिया, दशो प्राण, परिग्रह संज्ञा। अब ये मैथुन संज्ञा भी चली गई, पहले भाग में थी अब नहीं है। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चार मनोयोग, चार वचन योग, औदारिक काय योग, ये नव योग, अपगत वेद, अब अपगत वेद शुरू हुआ, चारों कषाय आदि के तीन ज्ञान, सामयिक और छेदोपस्थापना, ये दो संयम आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धिक, औषमिक और क्षायिक, ये दो सम्यक, संगिनी, आहारिणी, साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। टेबल बराबर है ये, यहाँ लिखा है बाहों से एक शुक्ल। हाँ हाँ, जैसे यहाँ हाँ आपका ऐसा प्रश्न है, यहाँ मनुष्यनी है, अगर यहाँ पुरुष होगा तो क्या क्या किसमें किसमें फर्क पड़ा? हाँ, ज्ञान में मन पर ज्ञान हुआ, और वेद में तो पुरुष वेद हो जाएगा, और अभी यहाँ की बात नहीं, छठे सातवां गुणस्थान लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? योग में भी वो आहारक आहारक मिश्र योग में आ जाएंगे, है ना? और ज्ञान में तो देखा, और संयम में परिहार विशुद्धि आ जाएगी, ख्याल है? ये यहाँ डिफरेंस होते हैं, नहीं आती, पुरुष वेदी क्यों ही होती है, आहारक और परिहार विशुद्धि वेदी दोनों, स्त्री और नपुंसक वेदी वाले को नहीं होता। कहाँ गया अभी? अभी तृतीय शुरू करना है ना, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के तृतीय भागवर्तिनी मनुष्यनियों के आलाप कहने पर एक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तिया, दशो प्राण, परिग्रह संज्ञा, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और औदारिक काय योग, नव योग, अपगत वेद, क्रोध कषाय के बिना तीन कषाय, अब तीसरा भाग है तो तीन कषाय आ गए, आदि के तीन ज्ञान, सामायिक और छेदोपस्थापनाएं दो संयम, आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छह और भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धिक, औषमिक शायकीय दो सम्यक्त्व, संगिनी, आहारिणी, साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। ये तीसरे भागवर्ती हो गए। अब आगे चौथे भाग की बात करेंगे, 528 पृष्ठ। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के चतुर्थ भागवर्तिनी मनुष्यनियों के आलाप कहने पर एक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तिया, दशो प्राण, परिग्रह संज्ञा, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चारों योग, चारों वचन योग, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और औदारिक काय योग, नव योग, अपगत वेद, माया और लोभ, ये दो कषाय। देखो अभी दो कषाय पर आ गए चौथे भाग में। आदि के तीन ज्ञान होते हैं, यहाँ पर स्त्री वेद के नष्ट हो जाने पर भी मनपरे ज्ञान के नहीं होने का कारण यह है, क्या है ना, यानी अभी तो वेद नहीं है, तो अभी तो पुरुष वेद हो पहले या स्त्री वेद हो तो क्या फर्क पड़ता है, तो उसके लिए कारण बताते हैं। यानी अपगत वेद हो जाने के बाद भी मनपरे ज्ञान प्रकट नहीं होता है, क्यों? जैसे अग्नि से दग्ध हुए बीज में अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार स्त्री और नपुंसक वेद के उदय से दूषित जीव में वेदोदय के नष्ट हो जाने पर भी मनपरे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। यानी अकेले वो पुरुष वेदी जीव के ही मनपरे ज्ञान उत्पन्न होगा, इसलिए यहाँ पर भी तीन ज्ञान ही कहे हैं। ज्ञान आलाप के आगे सामायिक और छेदोपस्थापना, दो संयम, आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छो लेशाय, भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धिक, औषमिक शायिक, ये दो सम्यक्त्व, संगिनी, आहारिणी, साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। अब पांचवें भाग की बात करेंगे, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के पंचम भागवर्तिनी मनुष्यनियों के आलाप कहने पर एक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तिया, दशो प्राण, एक परिग्रह संज्ञा, अभी नौवा का अंतिम भाग है, दसवें तक होगी परिग्रह संज्ञा, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और औदारिक काय योग, नव योग, अपगत वेद, लोभ कषाय अभी अकेला रह गया, आदि के तीन ज्ञान, सामायिक छेदोपस्थापना, दो संयम, आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छो लेशा, भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धिक, औषमिक और क्षायिक, ये दो सम्यक्त्व, संगिनी, आहारिणी, साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। अब ये तो नौवे गुणस्थान के पांचों ही हो गए। अब सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान की बात करेंगे। तो सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान वर्तिनी मनुष्य नियम के आलाप कहने पर एक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तिया, दशो प्राण, सूक्ष्म परिग्रह संज्ञा, सूक्ष्म लोभ है ना, तो एक परिग्रह भी यहाँ पर है। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक काय योग, ये नौ योग। अपगत वेद, सूक्ष्म लोभ कषाय, एक कषाय रह गया ना अभी अंतिम, आदि के तीन ज्ञान, सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयम, आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धिक, औपशमिक और क्षायिक ये दो सम्यक्त्व, संगिनी, आहारिणी, साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। ये दसवीं की बात हो गई। अब ग्यारहवें गुणस्थान की बात करेंगे। उपशांत कषाय गुणस्थान वर्तिनी मनुष्यनियों के आलाप कहने पर एक उपशांत कषाय गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तिया, दशो प्राण, उपशांत संज्ञा, यानी संज्ञा अभी कुछ नहीं रही, जीरो है, फिर भी वो उपशमित है इसलिए उपशांत संज्ञा लिख दिया। हाँ, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक काय योग, ये नौ योग। अपगत वेद, उपशांत कषाय, अब कषाय में जीरो है मगर वो उपशांत हुआ है। आदि के तीन ज्ञान, यथाख्यात विहार शुद्धि संयम, आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छो लेशा और भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धि, औपशमिक और क्षायिक ये दो सम्यक्त्व, संगिनी, आहारिणी, साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। अब यहाँ पर चारित्र कैसा है पूछेंगे तो क्या कहेंगे? यथाख्यात चरित्र नहीं, यहाँ जैसे हमने सम्यक्त्व में कहा ना, औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व, तो चारित्र कौन सा होगा यहाँ? हाँ, आप क्या कहें? औपशमिक चारित्र, क्योंकि चारित्र मोहनीय सभी उपशमित हो चुके, अभी अंदर पड़े हैं ना सभी, चारित्र मोहनीय कर्म अंदर है सब, उसका उपशम हुआ है क्रम से, एक 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 करके उसका उपशम किया है। हाँ, यह इस आलाप में कहीं नहीं है, मैं ऐसा ही पूछ रही थी आपको। अब बारहवें गुणस्थान की बात करेंगे। क्षीण कषाय गुणस्थान वर्तिनी मनुष्य नियों के आलाप कहने पर एक क्षीण कषाय गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तियां, पर्याप्तया हुआ है, पर्याप्तियां करना, दशो प्राण, क्षीण संज्ञा, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक काय योग, ये नौ योग। अपगत वेद, क्षीण कषाय, आदि के तीन ज्ञान, यथाख्यात विहार शुद्धि संयम, आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छव लेशा है, भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धि, क्षायिक सम्यक्त्व, अब ये बारहवें वाला है ना, संगिनी, आहारिणी, साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। अब सहयोगी जिन, तेरहवें गुणस्थान की बात चलेगी। एक सहयोगी केवली गुणस्थान, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये दो जीव समास, अभी समुद्घात भी है इनमें, इसलिए पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लेना। छह पर्याप्तियां, छह अपर्याप्तियां, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोश्वास, ये चार प्राण, यानी प्राणों में अभी बदल गए, बारहवें गुणस्थान तक तो पर्याप्त थे तो दस दस प्राण हम कहते आए थे, अब ये चार और दो हो जाएंगे। तथा समुद्घात की अपर्याप्त अवस्था में वचन बल और श्वासोश्वास का अभाव हो जाने से आयु और काय बल ये दो प्राण होते हैं। क्षीण संज्ञा, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, अब देखो मनोयोग में सत्य और अनुभय ये दो मनोयोग, ये ही दो वचन योग, औदारिक और औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग, ये सात योग। इसमें समुद्घात की अपेक्षा कौन कौन से योग है? हाँ, औदारिक मिश्र और कारमान, ये दो है। अपगत वेद स्थान, अकषाय स्थान, केवल ज्ञान, यथाख्यात विहार शुद्धि संयम, केवल दर्शन, द्रव्य से छव लेशाएं, भाव से शुक्ल लेशा, अभी तेरवे तक लेशा है ना, अभी भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धि, क्षायिक सम्यक्त्व, अब देखो संगी के कॉलम में संगिनी और असंगिनी इन दोनों विकल्पों से भी मुक्त अनुभय हम कह सकते हैं उसको, क्योंकि अभी यहाँ कोई मन का कोई कार्य नहीं रहा। आहारिणी अनाहारिणी दोनों लेना है, क्योंकि वो कर्मण का योग भी यहाँ पाया जाता है। साकार और नाकार इन दोनों उपयोगों से युगपत उपयुक्त होती है। अब 14वें गुणस्थान की बात करेंगे। अयोगी जिन गुणस्थान वर्तिनी मनुष्यनियों के आलाप कहने पर, एक अयोगी केवली गुणस्थान, एक पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तिया, प्राण कितने कहे प्रेरणा बहन, एक आयु प्राण, हाँ एक आयु प्राण, क्षीण संज्ञा, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, अभी अयोग स्थान, यानी कहाँ ख्याल में रखना है, इसमें ये प्राण में एक ही रह गया और आयु ये अयोग हो गया, अपगत वेद स्थान, अकषाय स्थान, केवल ज्ञान, यथाख्यात विहार शुद्धि संयम, केवल दर्शन, अब छहो लेशा और द्रभाव से अलेशा स्थान, ख्याल है ना, यह अभी एक ख्याल में रखना। भव्य सिद्धिक क्षायिक सम्यक्त्व, संगिनी और असंगिनी इन दोनों विकल्पों से मुक्त अनाहारिणी, अब पर्याप्त होते हुए भी यहाँ अनाहारक है क्योंकि योग का अभाव है। साकार और नाकार इन दोनों युगपों से उपयोगों से युगपत उपयुक्त होती है। ये यहाँ तक हमने मनुष्यनियों के सभी 14 गुणस्थान देखे। अभी हमने मनुष्यों के चार प्रकार देखे थे, सामान्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी और अपर्याप्त, हाँ लब्धि अपर्याप्त। अभी ये जो लब्धि अपर्याप्त मनुष्य है उसका आलाप अभी हम देखेंगे। तो बिना देखे अभी हम कौन ट्राई करना चाहते हैं, हाँ हाँ बोलो। एक पहला गुणस्थान जीव समास बताया, संगी अपर्याप्त, हाँ पर्याप्ति कितनी होगी, छह अपर्याप्तियाँ, प्राण सात, संज्ञा गति इंद्रिय एक पंचेंद्रिय, काय हाँ योग औदारिक मिश्र लब्धि अपर्याप्त है ना, वेद एक नपुसक वेद है, कषाय ज्ञान हाँ, संयम दर्शन लेशा द्रव्य की, एक ही क्यों कहा, द्रव्य की कितनी है, हाँ हाँ भाव की तीन अशुभ, भव्य सम्यक्त्व हाँ, संगी एक संगी है हाँ हाँ, और उपयोग हाँ, आप गड़बड़ घाई से कहना चाहते हैं ना, तो हाँ धीरे से बोलने, शांति से बोलना है? हाँ ये सम्मूर्छन मनुष्य है तो ये नियम से नपुंसक ही होते हैं, और ऐसा नहीं कि वो तो गर्भ में आया और लब्धि अपर्याप्त तो मर गया, ऐसा नहीं, जो गर्भ में आता है और भले कितने ही जल्दी में जल्दी क्यों ना मर जाए एक अंतर्मूर्त में, तो भी वो पर्याप्त तो होता है, लब्धि अपर्याप्त तक तो गर्भ में आता ही नहीं है, नपुंसक यानी वो तो सम्मूर्छन है ना, ऐसे उस विशिष्ट वातावरण में ही उत्पन्न हो जाते हैं, उसको सम्मूर्छन कहते हैं। हाँ बोलो, नेचुरली नहीं, विशेषता नहीं कुछ उसमें, लब्धि अपर्याप्त तक सम्मूर्छन जीव तो बहुत अधिक मात्रा में है, पर्याप्त मनुष्य तो संख्यात है, बिल्कुल है हाँ। अब हम कहेंगे इसको पढ़ेंगे, देखो हाँ गर्भ में आने वाले पर्याप्त ही होते हैं,
वो पर्याप्त नाम कर्म बांधते हैं और उनके छह पर्याप्ति पूरी होने में तो एक अंतर मुहूर्त लगता है कि आपके एक मान लो कि एक सेकंड में भी वो पूरा हो जाता है पर्याप्त, मानने के लिए मैं बता दूं, एग्जैक्ट मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन बहुत अल्पकाल में छह पर्याप्ति पूरी होती है और वो पर्याप्त होता है, भले
पर्याप्त होने के बाद मर सकता है, एक ही अंतर्मूर्त में मर जाए, भले करोड़ करोड़ पूर्व की आयु भी बांध कर क्यों नहीं आया है, पर्याप्ति पूरी हो जाते हैं और एक अंतर्मूर्त में सबकी वो उसकी कदली गात होकर मर सकता है, ऐसे भी पाए जाते हैं। आयु तो बांधी थी बहुत सारी, परंतु कदली घात से वो एक अंतर्मूर्त के पश्चात पूरे के पूरा इतने सारे परमाणु क्रम से उदय में आते एक एक समय में, तो एक करोड़ पूर्व की आयु अंदर थी, परंतु एक अंतर्मूर्त में मर सकता है।
अभी मनुष्यों में ऐसी बात है कि जो गर्भ में आते हैं उन मनुष्य जीवों, मतलब मनुष्य गति के जीवों को माँ बाप के निमित्त की आवश्यकता है, लेकिन जो लब्धिया पर्याप्त मनुष्य है वो तो जस्ट वातावरण में तैयार होते हैं, जैसे उदय बुदय होती है ना, वो तो लब्धिया पर्याप्त नहीं है, ये जैसे बाकी के जीव जो होते हैं वो तो
सम्मूर्छन है। हाँ, कदली घात कहीं हो सकता है, एक बार अगली आयु बांध ली तो कदली घात नहीं होगा। नहीं समझे आप? देखो जैसे 81 वर्ष की आयु है मनुष्य की किसी की, और 2/3 आयु बीत गई और उसने आयु का बंद कर दिया, आगामी आयु का बंद कर दिया, when is 27 years are remaining, तब उसने आगामी आयु बांध ली, भले कोई भी आयु बांधी हो, ख्याल है ना, तो अभी उस आगामी आयु का आबाधा काल कितना हुआ, 27 साल हुआ, अब उस आबाधा में चेंज नहीं हो सकता, अब उसका कदली घात से मरण नहीं होगा, उस जीव की बात है, पर जिसने आयु का बंध नहीं किया है उसका कदली घात होगा और फिर आयु भी बांधेगा, है ना, कदली घात होता है ना, अंतर्मूर्त ये सारे अभी निशेक उसके खिरेंगे उदीर्ण होकर, अब उतने काल में आगामी आयु का भी बंद करेगा, यानी एक अंतर्मूर्त पहले उसी, क्योंकि अभी त्रिभाग में तो बांधने तो उसके बहुत बाकी थे, जैसे उसको 57 साल बीतने पर उसके आयु का बंद होता, परंतु समझो अभी उसने 1 घंटे में वो मरना है कदली घात होके, तो कदली घात भी होगा और उसी समय वो आयु भी बांधेगा, आगामी आयु का बंद किए बिना तो मरेगा नहीं, तो कदली घात मरण के पहले पहले आयु भी बंद होगा, कदली घात भी तभी होगा और मरण होगा उसका, ख्याल है ना। हम देखते हैं ना कितने बहुत उम्र वाले जो ऐसे हम यंग तो हार्ट अटैक आया मर गया, अरे पर उनके तो हो सकता है कि आयु का बंद, उसमें भी ऐसे बहुत से होते हैं कि 8 त्रिभागों में आयु का बंद नहीं किया है और फिर उनका भी कदली घात हो सकता है, ऐसे कोई नहीं कि वृद्धों का नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं, जिसने आयु का बंद किया है उसकी नहीं होगी, ये बात मैं बताना चाहती हूँ। हाँ देखो, लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने पर इसको पढ़ेंगे, इसमें से एक मिथ्यात्व गुणस्थान, एक संगी अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, औदारिक मिश्र का योग, कारमाण का योग, ये 2 योग, नपुसक वेद, 4 कषाय, कुमति और कुश्रुति, ये 2 अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन, द्रव्य से कापोत और ये भाव से रह गया, नहीं द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेश्याय, वो लेव्याय हो गया, उसके लेश्याय करना उसको, भाव से कृष्ण नील और कापोत, ये 3 लेश्याय, ये कैसा उन्होंने समझा कि भाव से 3 अशुभ लेश्या होगी, मिथ्यात्व गुणस्थान है और अपर्याप्त अवस्था है, है? मिथ्यात्व उनके पर्याप्त अवस्था में भाव से 6 हो सकती थी, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, सौनिक, आहारक अनाहारक, साकार उपयोग और अनाकार उपयोगी होते हैं। देखो पृष्ठ संख्या 532 पर अयोगी का जो आलाप है नंबर 138, उसमें जीव समास में संगी लिखना रह गया है, अकेला पर्याप्त लिखा है उन्होंने, तो संगी पर्याप्त लिखना वहां, सम शब्द डालना, अक्षर डालना वहां, संगी, उसमें भी उन्होंने नहीं लिया है। उसका जो लिखा है ना, एक पर्याप्त युव समास लिखा है तो वहाँ एक संगी पर्याप्त लिखना चाहिए, वहाँ भी नहीं और नीचे भी नहीं है। किया करेक्शन कि नहीं? जो लिखा है ना ऊपर आलाप लिखा है उसके सेकंड लाइन में एक पर्याप्त जीव समास लिखा, तो यहाँ एक संगी पर्याप्त जीव समास लिखना चाहिए। इस प्रकार मनुष्यों के आलाप समाप्त हुए। ये मनुष्यों की बात हो गई, तो हमने तीन गति की बात देखी थी, नरक की, तिर्यंचों की और मनुष्यों की। अब कौन रह गए? देव। अब देव गति में सामान्य देवों के आलाप कहने पर, तो देवों की इन जनरल बात करनी है। डॉक्टर साहब आप बताएंगे, देवों में बताने हैं। हाँ, देव निवृत्ति अपर्याप्त तो होते हैं, जब तक पर्याप्ति बन रही है वो निवृत्ति अपर्याप्त तो होते, परंतु देवों में लब्धि अपर्याप्त तक नहीं होते, ना देवों में होते हैं, ना नारकियों में होते हैं, और ना ही भोग भूमि के जीवों में होते है ना। हाँ, गुणस्थान पहले चार, जीव समास, हाँ, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त दोनों लेना। पर्याप्ति हाँ छे छे, प्राण दस और सात, संज्ञा गति हाँ अभी देव गति, अभी तक हम बार बार मनुष्य गति कहते आए ना। इंद्रिय एक पंच इंद्रिय, काय तिरस्कार, योग, अभी गिनाओ कौन कौन से हो गए। पर्याप्त भी है अपर्याप्त भी है, दोनों के गिनाने हैं। मन के चार, वचन के चार, हाँ वैकृत वैकृत मिश्र, अभी देव है ना, अभी वैकृत, हाँ, और कारमाण 11 हो गए, बराबर है। वेद, हाँ देखो देवों में अभी नपुसक वेद नहीं होता, और वहाँ भी द्रव्य से जो वेद होगा वही भाव से वेद होगा, उसमें कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होगी, जैसे मनुष्य तिर्यंचों में हो सकता है उलट पुलट कुछ भी, वैसा देवों में नहीं होता। देवांगनाओं को तो स्त्रीवेदी होगा और वहाँ के देवों को तो पुरुषवेदी होगा, इस तरह से। कषाय चारों कषाय, ज्ञान हाँ, और गुणस्थान तो आपने चार बताए, हाँ तीन कुज्ञान और तीन सुज्ञान, छः संयम, असंयम, दर्शन तीन, लेशा हाँ द्रव्य की छः और भाव की भी छः, क्यों? हाँ पर्याप्त अपर्याप्त दोनों, हाँ तो सभी देव लिया, हाँ तो ऊपर के देवों में अपर्याप्त में कौन से लेने है? कितने शुभ अशुभ कितने लेना? पर्याप्त में तो किस में नहीं, मिथ्या तो हो तो भी उसकी शुभ लेशा ही होगी देवों में, और भवनत्रिक में वो तीन अशुभ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर्याप्त अपर्याप्तों के मिलकर छह लिखी है। अपर्याप्त में भवनत्रिक में होती है, मिथ्यात्व में, भवनत्रिक वाले जो मिथ्यात्वी है अभी वहां तो सम्यक भी पैदा ही नहीं होती है, वहां तो मिथ्यात्वी और सासाधन वाले जाएंगे है ना, तो वहां तो तीन अशुभ होती है, ऊपर के देवों में नहीं। मिथ्यात्व होगा तो भी शुभ लेशा होगी, क्योंकि क्या है ऊपर के स्वर्गों में पर्याप्त और अपर्याप्त की लेशा अलग नहीं होती। भवनत्रिक में अपर्याप्त अवस्था में अशुभ होती है और पर्याप्त बन जाने पर पीत लेशा बन जाती है, एक पीत लेशा होगी। अब हम क्रम से एक एक स्वर्ग की बात करेंगे अलग अलग, तो वहां ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। क्या ले? अभी तो हमने शुरू किया, अभी सामान्य सभी देवों को हमने इंक्लूड किया, इसलिए भाव से छह लेशा बताइए। हाँ, भव्य दोनों सम्यक तो कौन कौन से हो गए? मिथ्यात्व होगा कि नहीं होगा? सासाधन सम्यक मिथ्यात्व वो भी होगा। अब जो सम्यक दृष्टि जीव है वो कौन कौन से होंगे वहाँ, औपशमिक कोई होगे कि नहीं होगे, होगा क्योंकि यहाँ से मरकर जाएंगे। हाँ हाँ तीन हो रहे यानी छह सम्यक, क्योंकि हमने वो सामान्य लिया है उसमें पर्याप्त अपर्याप्त सभी है, ख्याल आता है। हाँ ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, पहले स्वर्ग में भी होगा शायिक समय दृष्टि, भवनत्रिक में होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ ख्याल संगी आहारक के अनारक दोनों है और उपयोग दोनों। अब पलटाओ मत, अब पर्याप्त का बताओ आप, गुणस्थान पर्याप्तों में क्यों मैं पर्याप्त के बहुत गड़बड़ी करते थे। हाँ पर्याप्तों में पहले चार गुणस्थान, हाँ जीव समास संगी पर्याप्त छह पर्याप्ति दस प्राण चारों संज्ञा देवगति पंचेंद्रिय जाति त्रस काय योग बताओ कौन से। हाँ बराबर है वेद, हाँ कषाय ज्ञान छह संयम हाँ दर्शन और लेशा भाव से तीन ही होगी। पर्याप्त आलाप अभी आपको कहा है, देखो पर्याप्त अवस्था है ना, तो देवों में पीत पद्म और शुक्ल इन तीनों में से पर्याप्त अवस्था में भव्य के अभव्य सम्यक्त्व हाँ छह आएंगे। इसमें औपशमिक में कौन कौन से आएंगे, द्वितीय ऑप्शन आएगा कि पहले प्रथम ऑप्शन होगा, प्रथम ऑप्शन होगा कि द्वितीय ऑप्शन होगा, आप फिर घोटाला करते हैं, थोड़ा बोलते हैं ना तो भूल नहीं करते, ज्यादा बोलने जाते तो भूल करते हैं। किसकी मृत्यु वो द्वितीय ऑप्शन में जाएगी, समझो जा सकते तो वो अपर्याप्त रहेंगे, देव के पर्याप्त हो जाएंगे, तो द्वितीय ऑप्शन सम्यक तो रहेगा क्या पर्याप्त। हाँ तो द्वितीय ऑप्शन की बात क्यों उठाई अभी, ख्याल है ना, पर्याप्त में द्वितीय ऑप्शन सम्यक तो नहीं होगा, पर्याप्त में प्रथम ऑप्शन ही सम्यक तो होगा। अच्छा देखो सर्वार सिद्धि वालों में कौन कौन से सम्यक तो हो गए पर्याप्तों में, फिर आप अपर्याप्त की बात क्यों कर रहे हैं। देखो पर्याप्त का अपना आलाप चल रहा है, पर्याप्त का आलाप चल रहा है, जो औपशमिक द्वितीय औपशम के साथ मरकर यहाँ से जाता है वो तो अपर्याप्त अवस्था के पहले पहले वो औपशमिक में से क्षौपशमिक हो जाता है ना, जब वो देव पर्याप्त हो गए तो क्षाउपशमिक हो गए, वहां तो कोई क्षायिक होने का सवाल नहीं है, जो क्षायिक के साथ जाएंगे उनका तो क्षायिक कायम रहेगा, ख्याल है ना, इसीलिए पर्याप्त की बात मैं बार बार पूछ रहे। हाँ अभी संगी आहारक हाँ और उपयोग दोनों।
मेरा ये प्रश्न है कि देवों में औपशमिक सम्यक्त्व कहाँ कहाँ प्राप्त होगा, हाँ नवे ग्रहवेग तक, क्योंकि वहां तक मिथ्या दृष्टि जीव जाते हैं।
प्रथम ऑप्शन सम्यक तो कौन प्राप्त करता है, जो मिथ्या दृष्टि है वो, ख्याल है ना, तो ऊपर के स्वर्गों में तो सम्यक दृष्टि जीव जाते हैं क्या। अभी देवों के ही अपर्याप्त आलाप कौन बता पूछना बताना चाहता है, हाँ तेजू भाई बताना है आपको, हाँ बोलो अपर्याप्त नहीं चाहिए। अच्छा अश्विन भाई आप बताना, सभी देवों की अपर्याप्त अवस्था चल रही है, गुणस्थान कौन कौन से हो गए? एक दो और चार। हाँ, सभी देवों की चल रही है बात, इसलिए हाँ, संगी अपर्याप्त, छह अपर्याप्तियां, सात प्राण, हाँ चार संज्ञा, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काएं, कौन से दो? हाँ, वैकृत मिश्र और कारमान, ये दो योग। वेद, स्त्री और पुरुष, कषाय चार। ज्ञान कौन कौन से हो गए? गुणस्थान कौन कौन से बताए आपने? एक दो और चार बताए, तो अपर्याप्त है। देखो, पहले दो गुणस्थानों में अपर्याप्तों में कौन से हो गए? दो कुज्ञान, और चौथे वाले के अपर्याप्त में तीन सुज्ञान, तो ज्ञान कितने हो जाएंगे? नहीं नहीं, ज्ञान की बात चल रही, ज्ञान की बात चल रही। विभंग ज्ञान अपर्याप्त में नहीं रहेगा, यानी दो कुज्ञान और तीन सुज्ञान, पांच ज्ञान हो जाएंगे। असंयम दर्शन में तीन लेना, अभी हमने अवधि ज्ञान भी लिया ना, चौथे के अपर्याप्त अवस्था में अवधि दर्शन भी होगा। हाँ, लेशा, हाँ दो भाव से छह होगी, क्योंकि हमने पहले देखा था अपर्याप्त अवस्था में तीन अशुभ होते हैं, भवन त्रिकोण में वगैरह। हाँ, भव्य अभव्य दोनों। हाँ, सम्यक तो कौन कौन से हो गए? अपर्याप्त अवस्था में सम्यक तो कौन कौन से हो सकते हैं? मिथ्यात्व, सासादन, औपशमिक है कि नहीं है? हाँ होगा। देखो, यानी तीनों ही प्रकार के सम्यक, तो कौन सा नहीं होगा सम्यक तो मार्गणा में से? हाँ, मिश्र नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व छोड़कर, मिथ्यात्व भी है, सासादन भी है, और सम्यक तो तीन प्रकार के सम्यक दृष्टि। हाँ, क्षायिक भी है, अपर्याप्त में है ना, क्षायिक तो होते ही, औपशमिक भी द्वितीय औपशम हो सकता है, द्वितीय औपशम में मरकर कोई जाएंगे तो चौथ। हमने देव इन जनरल सभी को लिया है, और हमने गुणस्थानों में बता भी दिया पहला, दूसरा और चौथा, तो द्वितीय उपशम के साथ चौथे वाला भी कोई वहां अपर्याप्त अवस्था में रहेगा, तो सम्यक तो क्षयोपशमिक भी लिया ना, क्षयोपशमिक लिया, क्षायिक लिया, मिश्र को छोड़कर पांच प्रकार के सम्यक, तो ये सम्यक तो मार्गणा के पांच भेद हमने लिया, मिथ्यात्व, सासादन, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व। संगी, आहारक, दोनों और दोनों उपयोग है। अब यहाँ हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, नहीं तो लंबे चले जाएंगे ना, तो फिर नहीं, बीच में वो कुछ वर्णन भी है ज्यादा। देखो, देवगति में यहाँ आए 533 पृष्ठ पर आए हम। देवगति में सामान्य देवों के सामान्य आलाप, सामान्य आलाप यानी फिर पर्याप्त के अलग और अपर्याप्त, दो बार सामान्य शब्द आया है। पहले सामान्य से क्या है? सभी देव, सभी स्वर्गों के देव, भवनत्रिक इंक्लूडिंग, भवनत्रिक इंक्लूडिंग देवांगना सब कुछ। और दूसरा सामान्य आलाप यानी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों को मिलकर, ऐसा सामान्य आलाप, क्या है, इसलिए दो बार सामान्य लिखा। आदि के चार गुणस्थान, टेबल देखना भाई, संगी पर्याप्त, संगी अपर्याप्त, ये दो जीव समास, छहो पर्याप्तिया, छहो अपर्याप्तिया, दशो प्राण, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, वैकृत का योग, वैकृत मिश्र का योग और कारमाण का योग, ये ग्यारह योग। नपुसक वेद के बिना दो वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान और आदि के तीन ज्ञान, ये छह ज्ञान। असंयम आदि के तीन दर्शन, द्रव्य और भाव से छह लेशाएं, यहाँ तीन अशुभ लेशाएं, अपर्याप्त काल की अपेक्षा जानना चाहिए, लिखा नहीं? तीन अशुभ लेशा अपर्याप्त काल की अपेक्षा, भव्य सिद्धि अभव्य सिद्धि, छह सम्यक्त्व, सौनिक आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अभी उन्हीं पर्याप्त सामान्य देवों के आलाप, यानी सामान्य देवों में पर्याप्त वाला आलाप। पहले हमने सामान्य देखा तो उसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों को इंक्लूड किया था, अब अकेले पर्याप्त, आदि के चार गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तिया, दशो प्राण, चार संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चार मनोयोग, चार वचन योग और वैकृत का योग, ये नौ योग, स्त्री और पुरुष ये दो वेद, चारों कषाय, तीन अज्ञान, अभी अज्ञान को अपर्याप्त है ना तो तीन अज्ञान लिया, और तीन ज्ञान, ये छह ज्ञान, असंयम, आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं होती हैं। यहाँ पर शिष्य कहता है कि देवों के पर्याप्त काल में द्रव्य से छह लेशाएं होती है, यह वचन घटित नहीं होता है, क्योंकि उनके पर्याप्त काल में भाव से छह लेशाओं का अभाव है। यदि कहा जाए कि देवों के भाव से छह लेशाएं मत होवे, किंतु द्रव्य से छह लेशाएं होती ही है, क्योंकि द्रव्य और भाव में एकता का अभाव अर्थात भेद है। देखो देखो, यहाँ पर शिष्य कहता है कि देवों के पर्याप्त काल में छह लेशाएं होती है, यह वचन घटित नहीं होता है। उसका प्रश्न पहले समझेंगे हम। ऊपर क्या कहा था, द्रव्य से छह लेशाएं होती है, भाव की अभी बात नहीं उठाई, उसके उठाने के पहले उन्होंने प्रश्न पूछा है कि द्रव्य से छह नहीं घटित होगी, क्यों? क्योंकि पर्याप्त काल में भाव से छह लेशाओं का अभाव है। पर्याप्त काल में भाव की छह नहीं पाई जाती, क्योंकि भाव की तीन ही होती है, पीत, पद्म और शुक्ल। और यदि कहा जाए कि देवों के भाव से छह लेशाएं मत होए, परंतु द्रव्य से छह लेशाएं होती ही है, क्योंकि द्रव्य और भाव में एकता का अभाव अर्थात भेद है, यानी द्रव्य तो ये शरीर का वर्ण है और भाव इसमें भेद है, इसलिए नहीं होती। ये शंकाकारी अपनी दलील कर रहा है अभी भी। सो ऐसा कथन भी नहीं बनता, क्योंकि जो भाव लेशा होती है उसी लेशा वाले ही औदारिक, वैकृत और आहारक शरीर संबंधी नौ कर्म परमाणु आते हैं, यानी जो देवों की पर्याप्त अवस्था में जो द्रव्य लेशा है वही भाव लेशा होती है, ऐसा नियम है। यदि यह कहा जाए कि उक्त बात कैसे जानी जाती है, तो उसका उत्तर यह है कि सौधर्म और कल्पवासी देवों के भाव लेशा के अनुरूप ही द्रव्य लेशा का प्ररूपण किए जाने से उक्त बात जानी जाती है। मैंने सौधर्म आदि ऊपर की जो नीचे वालों के पीत, द्रव्य से भी पीत होगी, भाव से भी पीत होगी, बीच में पद्म और पद्म होगी, इस तरह से। तथा देवों के पर्याप्त काल में तेज, पद्म और शुक्ल, इन तीन लेशाओं को छोड़कर अन्य लेशाएं होती नहीं है, इसलिए देवों के पर्याप्त काल में द्रव्य की अपेक्षा भी, ये द्रव्य की अपेक्षा भी वो इंसिस्ट कर रहा है, तेज, पद्म और शुक्ल लेशाएं होना चाहिए। इस प्रकरण में ये गाथाएं उपयुक्त है, इसलिए वो शंकाकार ने गाथा भी उद्धृत की है। हाँ, देखो 238 वाली, किन्ना भमर सवन्ना नीला पुन नील गुलिय संकासा काऊ कौ दवन्ना तेऊ तवणिज्जवन्नाय। कृष्ण लेशा, अच्छा दोनों साथ में, अभी आगे की भी पढ़ेंगे। पम्मा पौम सवन्ना सुक्का पुनकास कुसुम संकासा किन्नादि दौवलेसा वन्न विशेषो मुने यो। और नीचे लिखा ना, कृष्णादि द्रव्य लेशा वर्ण विशेषो मुने यो, यानी ज्ञातव्यो, यानी वे वर्ण विशेष है ऐसा जानना चाहिए। देखो, कृष्ण लेशा भौरे के समान अत्यंत काले वर्ण की होती है, नील लेशा नील की गोली के समान नील वर्ण की होती है, कापोत लेशा कपोत वर्ण वाली होती है, तेजो लेशा सोने के समान वर्ण वाली होती है, पद्म लेशा पद्म के समान वर्ण वाली होती है, और शुक्ल लेशा कांस के फूल के समान श्वेत वर्ण की होती है। इस प्रकार कृष्णादि द्रव्य लेशाओं के वर्ण विशेष जानना चाहिए। अब भाव लेशाओं के चिन्हों का थोड़े में संग्रह रूप से यह गाथा ज्ञान करा देती है। ये सब शंकाकार ने उद्धृत किए। निम्मूल खंद साहु वसाहम उच्चित्वाउ पड़िदाइम अभ्यंतरले साणम बिंदयेदाइम वयनाइम। जल मूल से वृक्ष को काटो, ये छह भावलेशय समझाई है उपमा देकर। क्या कहते हैं? जल मूल से वृक्ष को काटो, स्कंध से काटो, शाखाओं से काटो, उपशाखाओं से काटो, फलों को तोड़कर खाओ और वायु से पतित फलों को खाओ। इस प्रकार के ये वचन अभ्यंतर अर्थात भावलेशाओं के भेद को प्रकट करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कोई एक दूसरे को उपदेश दे रहा है कि तुझे पेड़ फल खाना है ना, आम खाने हैं, तो क्या करे? तो आम का वृक्ष मूल से काटो और फिर वो फल खाओ। यानी उसके खाने तो है फल, पूरा ही वृक्ष उखाड़ना चाहता है, दूसरे को उपदेश देता है। यह स्वयं पर घटित करना है कि कोई ऐसा जीव है उसको फल खाने हैं, मगर वो पूरा ही वृक्ष उखाड़ देता है और फिर फल खाता है, तो उसके भाव कैसे हैं? तो ये कृष्ण लेशा वाले भाव है। ये इसको कहते हैं, वो लेशा का चित्र कहते हैं। ऐसे छह आदमी बताए हैं और वृक्ष दिखाए, उसमें पेड़ पर आम लगे हैं और कौन जीव क्या क्या करना चाहता है। तो कोई कुरहाड़ लेकर नीचे से एकदम मूल से जमीन से वो निकालना चाहता है वृक्ष, कोई वो काटता है, ऊपर लिखा ना स्कंद को काटो यानी ट्रंक, नीचे का जिसको हम मराठी में खोड़ कहते हैं उसको काटेगा। तीसरा क्या करेगा? शाखाओं को काटेगा, बड़ी बड़ी शाखाओं का, बड़ी शाखा। और चौथा वाला उपशाखा यानी छोटी छोटी शाखाओं का काटेगा। पांचवा वाला है खाली आम को ही, फल को ही तोड़ तोड़ कर खाएगा। और छठा है वो क्या, जमीन पर जो गिरे है नेचुरली उसको उठा के खाएगा। तो उनके भावों में ये जो डिफरेंस है, इसको ये लेशाओं को इन दृष्टांतों के द्वारा समझाया। हमारे घर में मेरे बचपन की याद है, ऐसा अलग बड़ा इन्हें रूम थी, मंदिर जिसको हम कहते थे, जिन मंदिर गृह चैत्यालय, तो बड़े बड़े दीवारों पर ऐसे बड़े बड़े चित्र थे, 6 फुट बाय 6 फुट ऐसे बड़े बड़े चित्र, ऐसे बहुत सारे चित्र थे। जन्माभिषेक का था मुझे याद है, मुनियों का आहार दान देने का था, और एक लेशाओं का था। वो एक आता है ना कुएं में, यानी कोई पेड़ से लटका है, ऊपर से मधु छत्ते में से एक एक बूंद लटकती है, मुंह आ कर खा रहा है, और जिस डाली पर वो लटक रहा है वो दो चूहे उसको काट रहे कि अभी वो गिरने वाला है। नीचे बहुत बड़ा कुआ है, उसके अंदर ऐसे अजगर मुंह फाड़ के खड़े कि वो अभी खाए उसको। हाँ, और हाथी है, हाथी वो वृक्ष को जोर जोर से वो सूंड से वो हिला रहा है कि अभी वृक्ष ही पूरा नीचे। और ऊपर विमान ऐसा दिखा है, उसमें देवा है और उसको उठाना चाहते कि चल हमारे साथ, कि अभी इतना सारा भयंकर है यानी। और मधुछत्ता यानी मधुछत्ता था ना ऊपर, तो ये मधुमक्खियां भी वो भौंव करके उसको काट रही है, इतना सारा होते हुए भी वो मधु का बूंद नहीं छोड़ना चाहता है। और वो तो उसको चांस है जाने का, देव तो उसको लेने के आए हैं कि चलो मैं हम विमान से ले जाएंगे।
देखो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जिस डाली पे वो लटक रहा है अगर हाथ छूट जाए तो नीचे कुएं में गिरेगा। कुएं में तो एक निगोद गति वाला सबसे बड़ा अजगर है, चार गति वाले अन्य चार है। हा? और वो जो मधुमक्खी के जो
मधुमक्खियां
है वो उसको काट रही है, जैसे हमको संसार में बच्चे लोग काटते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको छोड़ता नहीं है। और ऊपर से एक एक मधु टिपकता है उसको, ऊपर से देव पुकार रहे चल चल, फिर एक 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 मिनट अभी जरा मेरे बच्चे को जरा लाइन में आने दो, अभी एक मिनट मेरी बेटी का विवाह करने दो, अभी अभी थोड़ा मुझको जरा थोड़ा सा सेटल होने दो। इसी में ये जो चूहे हैं ना, एक सफेद चूहा, एक काला चूहा,
रात दिन ऐसे बीत
दिन रात वो काट रहा है, ये आयु हमारी कट रही है, फिर भी यह जीव मोह से इतना लिप्त है कि उधर से वो छूट कर वो देव को बोलता है चल मैं तुझे मोक्ष चला लेके जाता हूँ।
तो वो भी इसमें से छोड़ना चाहता है मगर वो तो नहीं।
हाँ, अरे किधर भी ले जाए लेकिन
गति की बात नहीं, उसमें से वो हटाने उस उस दुखों से।
लेकिन कहना ये चाहते हैं कि
ऐसे जिनेंद्र थे, हमको ये जिनवाणी में समझाना चाहते हैं, पंतु समझना कहाँ चाहता है उसको, तो ऐसा लगता नहीं नहीं सबको ठिकाने लगा दो फिर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा,
ऐसे
जैसे इसको गारंटी है बूढ़ेपन की।
नहीं नहीं ऐसे चित्र पहले घरों घर होते थे, घर में हमारे महाराष्ट्र
बहुत इफेक्टिव है, मुझे अभी भी
मंदिरों में
एक एक चित्र एक
अगर आपको देखना हो तो यहाँ बम्बई में भी एक कांच मंदिर है चौपाटी पे और पहले माले पे है, वहाँ एक कांच में ऐसे निकाले हुए मतलब चित्र है कांच के ऊपर, देखने लायक है। ये तो खाली डेकोरेशन के नहीं, उसके पीछे बोध भी है और इस जीव को जागृत कराने के लिए। लेकिन हम पहले समझते ये क्या जूने जमाने का, चलो हटा दो अभी उधर एशियन पेंट लगाओ फलता पेंट।
तो ये मुझे इससे वो याद आ गए, ये लेशाओं का चित्र ऐसा, तो ये उपमा देकर समझाए भाव की लेशाएं छह प्रकार की। अब विशेषार्थ बताते इसी का, अभी शंका उसकी समाप्त नहीं हुई है, शंकाकार की बात चल रही। गोमट सार जीव कांड में उक्त अर्थ इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है कि फलों से लदे हुए वृक्ष को देखकर कृष्ण लेशा वाला विचार करता है। मिला कि इस वृक्ष को जड़मूल से उखाड़कर फलों को खाना चाहिए। नील लेशा वाला विचार करता है कि इस वृक्ष को स्कंद अर्थात मूल से ऊपर के भाग को काटकर फलों को खाना चाहिए। कपोत लेशा वाला विचार करता है कि इस वृक्ष की छाकाओं को काटकर फलों को खाना चाहिए। तेजो लेशा वाला विचार करता है कि इस वृक्ष की उपशाखाओं को काटकर फलों को खाना चाहिए। पद्म लेशा वाला विचार करता है इस वृक्ष के फलों को तोड़कर खाना चाहिए। और शुक्ल लेशा वाला विचार करता है इस वृक्ष के वायु से गिरे हुए फलों को खाना चाहिए। उक्त प्रकार के भावों से छह लेशाओं के तारतम्य को जान लेना चाहिए, यानी वहां उनके भावों की तारतम्यता बताना चाहते हैं। अब यहाँ 241 हम पढ़ेंगे, पहले 41-42 दोनों एक साथ जोड़ गाथा है ना ऊपर। तेउ तेउ तह तेउ पम्मा पम्माय पम्म सुक्काय सुक्काय परम सुक्का लेस समासो मुने यो तिन्नम दोन्नम दोन्नम छन्नम दोन्नम च तेरसन्नम च एतय चौदसन्नम लेसा भेदो मुने यो। क्या कहते तीन के, अब ऊपर तो तेउ तेउ लिखा है और नीचे संख्या लिखे तिन्नम दोन्नम दोन्नम है ना, यानी तीन के तेजो लेशा का जघन्य अंश। पहला तेउ यानी तेउ का जघन्य, जैसे हमने नरक में देखा था पहले नरक में जघन्य कपोत, फिर दूसरे में मध्यम कपोत, फिर आगे दोनों ही हुए थे, वैसे तीन स्वर्गों की बात करेंगे। तीनों में क्या है, तेजो लेशा का जघन्य अंश, दो के तेजो लेशा का मध्यम अंश। दो बार तेउ तेउ लिखा ना, पहला तेउ यानी जघन्य, दूसरा तेउ यानी मध्यम। नीचे की गाथा में उसकी संख्या बताइए, तिन्नम यानी तीन में तो जघन्य तेजो, दो में मध्यम तेजो, दो के तेजो लेशा का उत्कृष्ट एवं पद्म लेशा का जघन्य अंश। तेउ पम्मा यानी तेउ का उत्कृष्ट और पम्मा यानी पद्म का जघन्य, ये किसमें है? देखो तिन्नम के लिए जघन्य, दोन्नम के लिए मध्यम तेजो, दोन्नम के लिए उत्कृष्ट तेजो यानी तेउ पम्मा, ये दो के लिए। अब छह के लिए पद्मलेशा का मध्यम अंश, नीचे छन्नम लिखा और ऊपर पम्मा लिखा, वहां मध्यम की बात चल रही है। फिर नीचे दोन्नम और ऊपर पम्म सुक्का लिखा है। दो के पद्मलेशा का उत्कृष्ट एवं शुक्ल लेशा का जघन्य अंश, पम्म सुक्का में पम्म उत्कृष्ट है और सुक्क जघन्य है। अब तेरह के तेरह सन्नम लिखा है ना, यानी तेरह के 13 का कितना है, शुक्ल लेशा का मध्यम अंश, सुक्का लिखा है नीचे दूसरी लाइन में, ये सुक्का का मध्यम अंश है 13 के लिए। तथा 14 के परम शुक्ल लेशा होती है परम सुक्का, यानी उत्कृष्ट है। इस प्रकार तीनों शुभ लेशाओं का भेद जानना चाहिए। अब इसी का विशेषार्थ सुनो। पहले तिन्नम लिखा और जघन्य तेजो लिखा था, बराबर। भवनवासी वानव्यंतर और ज्योतिष्क इन तीन जाति के देवों के पर्याप्त अवस्था में जघन्य तेजो लेशा होती है। ये तिन्नम का अर्थ पहला कर दिया उन्होंने। सौधर्म अभी दोन्नम लिखा, दोन्नम में मध्यम तेजो है। तो सौधर्म और ईशान इन दो स्वर्ग वाले देवों के मध्यम तेजो लेशा होती है। फिर दोन्नम लिखा और उसमें तेउपम्मा लिखा था। सानत कुमार और महेंद्र इन दो स्वर्ग वाले देवों के उत्कृष्ट तेजो लेशा और जघन्य पद्म लेशा होती है। अब आगे कितने लिखे, छन्नम लिखे, तो उसके लिए ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो, कापिष्ठ, शुक्र और महाशुक्र इन 6 स्वर्ग वालों के मध्यम पद्मलेशा होती है, यानी 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, 10वें स्वर्ग तक, 5वें से लेकर 10वें तक मध्यम पद्मलेशा होती है। उसके बाद कितने लिए, छन्नम के बाद दोन्नम, तो शतार और सहस्रार इन दो स्वर्ग वालों के उत्कृष्ट पद्मलेशा और जघन्य शुक्ललेशा होती है। पम्म सुक्का लिखा था। अब उसके पश्चात कितने लिखे, देखो दोन्नम के बाद 13 सन्नम लिखा, 13 यानी रिमेनिंग 4 तो आनत, प्राणत, आरण, अच्युत और 9 ग्रेवेक मिलकर 13 हो गए। इन 13 विमान वालों के मध्यम शुक्ल रेशा होती है। और इसके ऊपर लिखा ना, अभी उसके ऊपर कितने, 14 सन्नम, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये 14 हो गए। इन 14 विमान वालों के उत्कृष्ट या परम शुक्ल लेशा होती है। तो हमें खाली इतना लक्ष्य ख्याल में लेना, 3, 2, 2, 6, 2, 13, 14 है ना। पहले 3, फिर 3 ना, पहले 3 फिर 2, पहले 3 फिर 2 फिर 2 फिर 6 फिर 2 फिर 13 और फिर 14, 14 सन्नम। पहले 3 यानी भवनत्रिक, फिर 2 यानी सौधर्म ईशान, फिर सानत कुमार महेंद्र, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र, फिर 2 यानी शतार सहस्रार, फिर 13 यानी आनत प्राण तारण अच्युत और 9 ग्रेवेक, और फिर 14 यानी अनुत्तर के 9 और अनुदिश के, अनुदिश के 9 और अनुत्तर के 5, 14। समाधान, ये अभी तक तो शंकाकार ने शंका पूछी। उसका कहना ऐसा था कि स्वर्गों में जैसी द्रव्य की लेशा होती है वैसी भाव की लेशा होती है, और आप यहाँ पर्याप्त जीव समास कह रहे हैं, इसलिए द्रव्य से आप 6 लेशाएं क्यों कह रहे हो, प्रश्न ख्याल है ना। और उसके लिए उन्होंने लंबी चौड़ी सब उदाहरण भी दे दिए घुमड़ सार के। उसका समाधान, शंकाकार की पूर्वोक्त शंका का परिहार करते हैं, उसका निराकरण करते हैं, उसका खंडन करते हैं। पूर्व में कही गई ये गाथाएं तो तुम्हारे पक्ष को नहीं साधन करती है। ये गाथाएं उद्धृत की इसलिए वो उसका पक्ष सिद्ध होगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वे गाथाएं उभय पक्ष में साधारण अर्थात समान है और न तुम्हारी कही गई युक्ति भी घटित होती है। यानी वे गाथाएं तभी आचार्य कहते वो हमारे भी पक्ष को सिद्ध करती है, अकेले आपको पक्ष को नहीं सिद्ध करती, इसलिए उभय पक्ष लिया। जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, अब उसका स्पष्ट करते उसको। द्रव्य लेशा अपर्याप्त काल में होने वाली भाव लेशा का तो अनुकरण करती नहीं है, अन्यथा अशुभ तीनों लेशा वाले उत्तम भोगभूमिया मनुष्यों के अपर्याप्त काल में धवल वर्ण के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। क्या कहना चाहते हैं, कि आप ये जो रूल बता रहे हैं जैसी द्रव्य की लेशा और भाव की लेशा उसकी एकता होती है, तो ये रूल तो अपर्याप्त काल में संभव नहीं होता है, क्योंकि अभी यहाँ भले स्वर्गों में द्रव्य की और भाव की अपर्याप्त काल में समान होती है, परंतु उन्होंने भोग भूमि का उदाहरण दिया। भोग भूमि में जन्मने वाले जो है उत्तम भोग भूमि में मनुष्यों के अपर्याप्त काल में धवल वर्ण का अभाव हो जाता, नहीं तो अपर्याप्त काल में उनके मिथ्या दृष्टि शासन में तीन अशुभ लेशा होती है, और वहां अपर्याप्त काल में शुक्ल लेशा पाई जाती है द्रव्य की। तो यदि भाव और द्रव्य की समानता ही होनी थी तो ऐसा धवल वर्ण नहीं हो सकता था, ख्याल है ना। तथा कर्मभूमि जो मिथ्या दृष्टियों के भी अपर्याप्त काल में गौर वर्ण का अभाव प्राप्त होता, ये कर्मभूमि के मिथ्या दृष्टि वालों की भी वही प्रसंग आ जाता। इसी प्रकार पर्याप्त जीव संबंधी द्रव्य लेशा पर्याप्त काल संबंधी भावलेशा का नियम से अनुकरण नहीं करती है, यानी ऐसा कोई नियम नहीं है कि द्रव्यलेशा और भावलेशा एक ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि वैसा मानने पर छह प्रकार की भावलेशाओं में निरंतर परिवर्तन करने वाले पर्याप्त तिर्यंच और मनुष्यों के द्रव्यलेशा के अनियमपने का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। क्या कहते हैं, मनुष्यों में और तिर्यंचों में छह लेशाओं का परिवर्तन सतत पाया जाता है, कभी शुक्ल लेशा है तो कभी ऐसा कमती होते होते तो फिर पद्म वगैरह होते होते कृष्ण तक चले जाए, और कृष्ण से फिर वापस पेंडुलम शुक्ल तक भी चला जाए, ऐसा कोई उसका नियम नहीं है। तो यदि भावलेशा के अनुसार शरीर का वर्ण भी बदल जाता तो अच्छा होता ना, सामने वालों को पता चलता अभी इसके कैसे भाव है ना। जैसे वो चमेलियन होता है ना, कलर बदलने वाला, वो सरड़ा, क्या कहते आप गुजराती में, क्या कहते हो, काचीडो, हाँ तो वैसा हो जाता है, मगर उसके भी भावलेशा के अनुसार कलर नहीं बदलते, उसके तो वाता एनवायरमेंट का जैसा कलर होगा वैसे होते हैं, हाँ सराउंडिंग से। तो अनियमपने का प्रसंग प्राप्त हो जाए, और यदि द्रव्यलेशा के अनुरूप ही भावलेशा मानी जाए तो धवल वर्ण वाले बगुले के भी भाव से शुक्ल लेशा का प्रसंग प्राप्त होगा, क्या है ना, शरीर से धवल वर्ण होगा या गोरा कोई होगा तो अच्छा है, उसके भाव अच्छे होंगे, ऐसा कोई नियम नहीं। तथा धवल वर्ण वाले आहारक शरीरों के और धवल वर्ण वाले विग्रह गति में विद्यमान सभी जीवों के भाव की अपेक्षा से शुक्ल लेशा की आपत्ति प्राप्त होगी, यानी सभी शुक्ल लेशा वाले हो जाएंगे विग्रह गति वाले धवल वर्ण हो तब। दूसरी बात यह भी है कि द्रव्यलेशा वर्ण नामा नाम कर्म के उदय से होती है, भावलेशा से नहीं, क्या है ना, उसमें निमित्त है वो वर्ण नाम का नाम कर्म, स्पर्श रसगंध वर्ण नाम के नाम कर्म है, उसमें जो वर्ण नाम कर्म है उसके कारण ये द्रव्यलेशा बनती है, इसलिए दोनों लेशाओं को एक कह नहीं सकते, क्योंकि अघातीय और पुद्गल विपाकी वर्ण नामा नाम कर्म तथा घातीय और जीव विपाकी चारित्र मोहनीय कर्म इन दोनों की एकता में विरोध है। भावलेशा में तो चारित्र मोहनीय कर्म निमित्त है, कषाय है ना वह, और द्रव्यलेशा में शरीर नामा नाम कर्म, ये वर्ण नामा नाम कर्म कि जो अघातिया का है, नाम कर्म अघातिया का है और ये घाती कर्म की प्रकृति है। यदि कहा जाए कि कर्मों के विशेषोपचय का वर्ण तो भावलेशा से होता है और औदारिक वैग्रहिक आहारक शरीरों के वर्ण वर्ण नामा नाम कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए हमारे कथन में यह उक्त दोष नहीं आता, सो यह कहना भी ठीक नहीं है। शंकाकार कहता है कि वो विश्रेषोपचय तो धवल वर्ण का है, तो वो तो भाव के कारण वो धवल हो गया है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण लेशा वाला जीव चंड कर्मा होता है, वैर नहीं छोड़ता है इत्यादि रूप से बाहरी कार्यों के उत्पन्न करने में तथा स्थितिबंध और प्रदेशबंध में भावलेशा का व्यापार देखा जाता है, यानी वो जो कृष्ण लेशा वाला जो जीव है उसका बाहरी व्यापार भी वैसा ही होता है, और उसका स्थितिबंध और प्रदेशबंध भी उसके कारण अधिक होता है, इसलिए यह बात सिद्ध होती है कि भावलेशा द्रव्यलेशा के होने में कारण नहीं है, यानी दो बातें सर्वथा भिन्न है, ऐसी बातें बता रहे हैं। इस प्रकार उक्त विवेचन से यह फलितार्थ निकला कि वर्णनामा नाम कर्म के उदय से भवनवासी वानव्यंतर और ज्योतिषी देवों के द्रव्य की अपेक्षा छहो लेशाएं होती है, भवनत्रिक में छहो लेशा होती है द्रव्य की, तथा भवनत्रिक के ऊपर के देवों के तेज पद्म और शुक्ल लेशाएं होती है, उनका वर्ण भी वैसा वैसा रहता है। अब इसकी अधिक चर्चा हम कल करेंगे, अब तो यहाँ रुकते हम। जावाणी के ज्ञान